नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।